شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور انبیاء حبیب کبریا نور خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس مسلمان کے والدین ہیں اور وہ صبحوں کو ان کی خیریت دریافت کرتا ہے اور والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر والدین میں سے ایک ہی ہے تو ایک دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے. اور جو اس حالت میں صبح کرے کہ ماں باپ کے بارے میں وہ اللہ عز و جل کا نافرمان ہے تو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہے تو ایک دروازہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا گیا، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، تو والدین اگر بالفرض ظلم بھی کریں تب بھی اس نے سلوک کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو ماں باپ چاہے کتنا بھی ظلم کریں، ماریں، کوٹیں، ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہوگا اور ہم ماں باپ کی نافرمانی اب بھی نہیں کر سکتے. ہاں اگر ماں باپ شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دیں تو اب ماں باپ کی اس معاملے میں فرما برداری نہیں کریں گے. یہاں تک ہے کہ اگر والد اندھا ہے، کافر بھی ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے بت خانے میں پہنچا دو، مندر میں چھوڑے آؤ، تو ماں باپ اس اندھے والد کو یا اندھی ماں کو بت خانے میں औलाद छोड़ने ना जाए, या फरमाबरदारी नहीं है। मगर ये कहे कि मुझे बुतखाने से घर ले आया करो, वालिद अंधा है, कहता कि बुतखाने से मुझे घर पहुंचा दिया करो, तो यहाँ वालिद की इताअत करनी पड़ेगी, अंधे माँ बाप को बुतखाने से घर लाना होगा। इतनी माँ बाप की अहमियत है। तो जहाँ जहाँ शरीयत की खिलाफ वर्जी का कहे वहां नहीं मानेंगे। माँ बाप कहते हैं झूठ बोल दो, चुरा के लाओ, जमात से नमाज मत पढ़ो या नमाज ही मत पढ़ो, जहाँ शरीयत का हुक्म है वहां माँ बाप की नहीं मानेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना करार कलमो सीना फैज़े गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाईस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स माँ बाप या उनमें से किसी एक की कब्र पर हर जुमे को जियारत के लिए हाजिर हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह बख्श देगा और वो माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा। बल्कि एक रिवायत कुछ इस तरह भी है, मजमून ये एक रिवायत में कि जो अपनी माँ या बाप को एक मर्तबा रहमत की नजर से देखे उसको एक हज मबरूर का सवाब मिलता है। हज मबरूर यानी मकबूल हज किया गया कि दिन में अगर कोई दफा से देखे, ये 50 या 100 ये एक मतलब मिसाल होती है, जैसे कहते ना तुझे 20 दफा समझाया मानता नहीं, तो ये एक मतलब मुबालगा होता है कि यानी कि बारहा 20 मरतबा यानी बारहा 100 दफा कहता हूँ फिर भी तेरी समझ में नहीं आता, इसका मतलब भी बारहा न कि 99 और 100, ये मुराद यानी 100 का या फिगर नहीं। तो इसी तरह मतलब है कि यहाँ भी कि कई बार देखे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसको उतने ही हज मबरूर का सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए मतलब जिसके माँ बाप जिंदा है वो तो यार बड़े खुशनसीब है इन मानों में, तो उनको तो बिल्कुल रज के वालिदैन की जियारत करनी चाहिए और रोज करनी चाहिए, दिन में बार बार करनी चाहिए, जान जान कर माँ बाप को देखना चाहिए, रहमत की नजर से मोहब्बत वाली प्यार भरी हमदर्दी वाली। तो यहाँ तो माँ बाप बीमार होते तो आंख नहीं भाते, हाँ जब सेहतमंद है माँ बाप कमा के लाते हैं या खिलाते हैं, माँ पका के खिलाती है जब तो कुछ गनीमत लगती है, लेकिन जूरी शादी होती है तो माँ बाप से लोग आंखें फेर लेते हैं, अब माँ की बात अच्छी नहीं लगती, बाप देखा अच्छा नहीं लगता ना जुल्म। हालांकि हदीस शरीफ में कि माँ बाप अगर जुल्म भी करे तो भी उनके साथ उसने सुलूक करो, हिकमत अमली से ये मसाइला हल कर सकते हो, लेकिन बड़ा नाजुक मामला है और लोग जो है वो वालिदैन की आजकल इताअत से बहुत ज्यादा वो कतराते हैं। अपने वालिदैन को सताने वाले और शैतान के दरमियान जहन्नम में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा, मैं शैतान को कितना सख्त अजाब होगा, एक दर्जा एक ग्रेड शैतान से कम रह जाए, इतना सख्त अजाब वालिदैन के नाफरमान को होगा। यहाँ तक के हदीस पाक में आता है कि मेराज की रात सरवर कायनात का है मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को आग की शाखों से लटका हुआ देखा, आपकी हिम्मत मत किया गया कि ये माँ बाप के नाफरमान लोग। तो वालिदैन के हुकूक से बंदा सुबुकदोश हो ही नहीं सकता। एक वाकया बुजुर्गों ने लिखा है, एक शख्स ने अपनी माँ को कंधे पर उठाकर 7 हज करवाए, एक नहीं दो नहीं पूरे 7 हज करवाए। अब उसके जहन में ये बात आई, अब तो शायद मैंने अपनी माँ का हक अदा कर लिया होगा, 7 हज करवा दिए। तो जब उसके जहन में ये बात आई कि अब मैंने मेरी माँ का हक अदा कर लिया होगा, तो उसको गैब से इस तरह आवाज आने लगी कि जब तू दूध पीता बच्चा था वो छोटा था, एक बार सख्त सर्दियों की रात थी और तूने बिस्तर पर पेशाब कर दिया, तो कड़कड़ाती सर्दी में तेरी माँ उठी बिचारी ने तेरा पेशाब आलूद बिस्तर धोया, मगर तुझे इस खौफ से उस गीले बिस्तर पर नहीं लिटाया कि मेरा लाल गीले बिस्तर पर ठंडी में अकड़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, बीमार हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। इस वजह से तेरी तुझ पर ममता की मारी माँ ने ये किया कि खुद इस थर्रा देने वाली सर्दी के बावजूद गीले ठंडे बिस्तर पर लेट गई और तुझे अपने गरम गरम सीने से लिपटाए रखा और इसी तरह उसने रात गुजारी। तो ऐ नादान, अभी तो तूने उस एक रात का हक अदा नहीं किया और तू समझता है कि मैंने हक अदा कर लिए माँ बाप को, माँ के हक अदा कर लिए। तो माँ के हुकूक से कोई सुबुक दोष नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं। तो वो लोग गौर करें जो माँ को बात बात से डांट देते हैं, झाड़ देते हैं, झिड़क देते हैं, बुढ़ी हो गई है, टर टर करती रहती है, किसी बात में समझती नहीं है, कुड़कुड़ करती रहती है हर वक्त, तुझे क्या पता कि दुनिया तरक्की कर गई है, ये करती है तू वो करती है, इस तरह कहने वाले जरा इस रिवायत से अंदाजा लगाएं जो अब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। इरशाद फरमाया मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की बेशक उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की जन्नत दाखिल हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फरमाया माँ बाप के नाफरमान को जब उसकी कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उसे दबाती है जहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं और कियामत के रोज जहन्नम में लोगों में सबसे ज्यादा तीन शख्सों पर अज़ाब होगा, वालिदैन का नाफरमान, दानी और मुशरिक। तो ऐ मेरे कमजोर और नातवान इस्लामी भाइयों, मैं तो आपको मशवरा दूंगा ये जल्द तर बल्कि फौरन से पेश कर अपने माँ बाप को राजी कर लीजिए। अगर वो नाराज नहीं भी हैं तो भी वक्तन फवक्तन मुआफी मांग लीजिए, उनके कदम पकड़कर उनको राजी करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनको आपकी कोई बात नागवार गुजर जाए, वो अपने दिल पर ले लें और आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए। एक हदीस शरीफ में है ये जिसने माँ से कदम चूमे उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। तो जब जब मौका मिले माँ के पांव चूम लिया, ठीक है। और कम से कम रोजाना एक बार तो वालिद का हाथ भी चूम लिया करो, ये अपना वजीफा बना लो कि रोजाना एक बार अपने वालिद का हाथ चूमना है और रोजाना कम से कम एक बार जन्नत की चौखट को चूमना। और जन्नत की चौखट मैंने आपको बता दी कहाँ है, आपके घरों में तो मेरे घर में नहीं है, मेरी माँ तो दुनिया से चली गई। माँ मर जाती है तो उर्फ आम में कहते हैं कि दुआ का दरवाजा बंद हो गया। इससे गरज नहीं कि माँ बाप बेनमाजी हैं, दाढ़ी मुंडे हैं, फिल्म देख रहा है, सुना है, इससे हमें गरज नहीं। हमारे लिए हमारे माँ बाप है, वो कैसे भी हमें उनकी ताजीम का सवाब मिलेगा। बाप बेनमाजी है, जब भी आप हाथ चूमोगे सवाब मिलेगा। इसी तरह माँ बेनमाजी है या बेपर्दगी करती है, जो भी करती है, ये उनका बेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए सब जायज है क्योंकि आपके माँ बाप ने किए, ये वो जाने उनके आमाल जाने, क्योंकि आपके माँ बाप होने का उन्हें गर्व हासिल है। तो इसलिए आप अपना काम करें, वो अपना काम। हाँ ये जरूर है कि आप उनके हक में गिड़गिड़ाकर तड़प तड़प कर दुआ मांगे कि उनकी अगर कोई भी बेअमली है तो अल्लाह ताला वो दूर फरमा दे। बेनमाजी हैं या जो भी गुनाह वो करते हैं उनके लिए दुआएं मांगते रहे, मतलब नहीं दुआएं मांगते रहे, मगर ये नहीं कि आप उनको झाड़ते रहे। टीवी बंद कर दो, बेपर्दगी हराम है, मैं टीवी उठाकर तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बाप को बोले कि हराम रोजी कमाना छोड़ दो, सूद खाते हो, ये तरीका इस्लाह का नहीं है। इस्लाह नरमी से ही की जा सकती है, अर्ज करके की जा सकती है, ऑर्डर करके नहीं की जा सकती। बाप अगर औलाद को ऑर्डर करे, हुक्म करे तो बाप उसका मजाक है, लेकिन औलाद बाप को या माँ को ऑर्डर नहीं कर, अर्ज कर सकती है, ठीक है ना। तो सख्ती से समझाने को यूं समझो, एक मिसाल के सख्ती करने से असल आ जाती है जिद। बारहा ऐसा होता है कि अगर आप किसी को सख्ती से समझाओ तो उसकी घूम जाती है, वो अड़ी पे आ जाती है, जिद पे आ जाती है। तो सख्ती से समझाने की मिसाल को यूं समझो कि किसी बर्तन में आपने पानी भरना है, तो पानी भरना चाहते हो, इससे पहले आपने बर्तन के पेंदे में सुराख कर दिया। सख्ती की मिसाल ऐसी है कि जिस बर्तन में पानी भरना है उसमें से पहले से आपने सुराख कर दिया। अब जाहिर है कि जब आप बर्तन में सुराख कर चुके, अब लाख पानी डालो वो तो फेरेगा नहीं। तो इसी तरह किसी को झाड़ दिया, लिताड़ दिया और फिर मतलब उसको आपने मतलब कहा ये करना पड़ेगा, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी, वो उसको समझ नहीं आएगी। मसलन शर्म नहीं आती तुझे फिल्में देखता है, दलील कहीं का दाढ़ी मुंडाता है, फासिक कहीं का, अगर इस तरह आप कहो तो लाजमी बात है वो अगर उसकी शैतान देखा देगा तो नमाज पढ़ता वो भी छोड़ देगा। यार मुरानों वैसे मतलब टेढ़ी बातें करते, मैंने कोई जो अल्फाज है वो शरीयत के खिलाफ नहीं थे, ये बताऊंगा, कहीं आप ये नहीं समझिए गालियां देता है, तो गालियां नहीं कहती है ना। तो हमारा ये कि जो कबीरा गुनाह अला ऐलान करते हैं अलानिया दाढ़ी मुंडा तो फासिक तो है शरण, लेकिन ये कि मतलब अंधे को भी आजकल हाफिज जी कहते हैं, आपको पता है अंधे वंदा को समझ में कभी भी नहीं आएगा, उसकी घूम जाएगी। तो इसलिए नरमी, अंधे को हाफिज कहा करो ये नहीं कहता कि ये भी गलत है कि जो हाफिज है कुरान नहीं है उसको हाफिज करो, ये तो झूठा मस्का, झूठी खुशामद भी शरीयत में जायज नहीं। तो मैंने तो एक दुनिया भी मिसाल दी, तो अंधे को भी अंधा ना कहो, जिस तरह नॉर्मल आप बड़े को कहते हैं चचा जान भाई साहब, तो इस तरह नाबीना को भी यही कहें आप भाई जान, या जो भी मतलब है मुहद्दब अल्फाज होते हैं शरीयत के दायरे में रहकर, ठीक है। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे सही भाइयों, मैं सच कहता हूँ, अगर आपको दुनिया और आखिरत बेहतर बनानी है अपने माँ बाप से मत मिलाओ। हाँ, दीन के मामले में वो रोके आपको, दाढ़ी नहीं रखने देते जैसे, तो ये बात आप नहीं मानी कि ये ना माने, लेकिन मतलब ये कि उनसे अब भी सख्ती नहीं करें। बेशक ये बात तो हरगिज ना माने, दाढ़ी तो उनके कहने पर मुंडाए नहीं, हम मुंडाएंगे तो ये भी फंसेंगे, लेकिन ये कि अब उनसे फड्डा करना और शोर शार करना ये भी सही नहीं। अब बस माने कि मतलब नहीं, मैं दाढ़ी नहीं मिला, या चुप या रो ले अगर दिल भर आए तो, इंशाल्लाह उनको समझ में आ जाएगा। अगर आप बदअखलाकी करोगे, घर में मसाइल या सुन्नतें मुसल्लत करने जाओगे कि तुम लोग इस तरह खाना खाते हो, इतना गिराते हो, ये तो इसराफ है, नाजायज है, बर्तन धोकर पिया करो, इस तरह नहीं मानेंगे। अगर माँ बाप सर वो गुनाह करते हैं, घर में मदनी माहौल नहीं है, भाई बहन पेट नहीं है, तो आपके लिए मैंने मदनी फूलों का गुलदस्ता तैयार किया हुआ है, पूरी जमाना होगा, भयानक ऊंट मेरा इशारा है, भयानक ऊंट जो मकतबतुल मदीना के स्टॉल से आपको मिलेगा, और मेरे रिसाले मेरे बयान से मैं दुनिया का पैसा नहीं कमाता हूँ, ये तो मेरे वसीयतनामे में भी छपा हुआ है, मेरी औलाद को भी इससे कमाने की इजाजत नहीं है, पैसे ये सब अल्लाह के लिए वक्त है, इसलिए वजात करता रहता हूँ। बाद अवकात लोगों को बसों से आते हैं, अपना कारोबार इस तरह करता है तो मेरा ये कारोबार जरूर है, मगर ये नोटें कमाने का कारोबार नहीं है, नेकियां कमाने का कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी नेकियों में बरकत अता फरमाए और इन पर अमल करें। ऐसे साईं भाई आए हैं मेरे पास कि जिनका घर में बहुत मतलब यानी कि वो टेंशन रहता था, लेकिन इन पर जब अमल करना शुरू किया, इन्होंने नरमी इख्तियार की, मेरे मदनी फूलों को अपनाया, तो इस तरह के लोग आए जिन्होंने मुझे बताया कि यार इस पर हमने अमल किया तो अब फर्क पड़ा है, वालिदैन की कुछ शफकतें हासिल होने लगी, सेट होने लगी, तो ये होता है, यानी हिकमत अमली से काम। अब जैसे मसलन और हिकमत अमलियां, वो हम लोग जो है जैसे के इस तरह काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन का, तो अवाम के जहन में ये भी है कि मौलाना लोग फड्डे करते हैं, झगड़े करते हैं, फसाद करते हैं, तो इसमें मैंने बताया कि जब ये इज्तिमाए दुआ हुआ ककड़ी ग्राउंड में, तो ये जाहिर है कि जो मतलब खून खराबा करता हो दहशतगर्दी के खिलाफ वो क्या इस्तेमाल करेगा, और मतलब मैंने कहा दुआ मांगेगा और लोग उसमें रो रो के दुआ मांगेंगे, ये जाहिर है कि मतलब इतना बड़ा इस्तेमाल कर भी नहीं। तो उस हिस्से में मैंने बताया कि मैंने ये खबरें जो अखबार में आई थी ये अपने घर में पढ़कर माँ को और वालिद को सबको पढ़कर सुनाया घर वालों को, बड़ी अच्छी सेटिंग हुई घर वालों की, बड़ी गलत नहीं अधूरी। तो इस तरह मतलब ये कि आप हिकमत अमली से सेटिंग कर सकते हैं, अर्ज करके फैजान सुन्नत का दर्द तो लाजिम कर ले, कोई ना सुने दीवारों को सुनाए, कभी किसी को रहम आ जाएगा वो सुन ले, मगर आपकी रोनी सूरत हो इंशाल्लाह कभी ना कभी कोई तो सुन ले, किसी के दिल में तो रहम आ जाएगा। और सेटिंग क्योंकि बरसों की बदअखलाकियां अभी एक दिनों में खत्म उनका असर नहीं होगा, माहौल से पहले बहुत बदअखलाकियां आपने हो सकता है की होंगी, तो अभी एक एकदम से आप मतलब यानी कि वो अपने मामलात नाफिज करना चाहोगे नहीं, पहले अखलाक और किरदार के जरिए माँ बाप को जीतो, जब आप जीतने में कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह आपके माँ बाप आपसे सेट हो जाएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आज आपने दर्द नहीं दिया, जरा और दर्द दो और कोई अच्छा सा वाक्य हमको निकाल के सुनाओ, इंशाल्लाह मतलब सेटिंग हो जाएगी। तो घर में शुरू में दर्द देना हो ना, तो इसका मतलब है कि जहाँ भी हिकमत अमली अच्छे कोई करामतों के वाकयात आप सुनाएंगे, बयान नहीं सुनते नहीं सुनते तो आप इनको ऐसे मौके पर बयान सुनाएं इसमें करामत का जिक्र हो, वाकयात का जिक्र हो, मौके की मुनासिबत घर वालों की नफ्सियात के मुताबिक, करामतें और ये सुनेंगे ना बयान तो इनको मतलब लुत्फ आएगा, जीत आएगा, तो फिर करामतों के साथ साथ फिर वो अपनी सुन्नतों के और इस तरह के मौत के और खौफ के भी मतलब बयान वो सुनना शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप जैसे माँ बाप बोलेंगे कि दावत इस्लामी वाले यूं करते हैं और माँ बाप से लड़वाते हैं, घरों से निकलवाते हैं और घरों में भिड़वाते हैं, तो जैसे आज के बयान आप प्यार से सुना दें कि देखो दावत इस्लामी वाले हमको क्या सिखाते हैं, देखो फुलाने ने घर में यूं हंगामा कर दिया, घर से भाग गया, अब फुलाना भाग गया इसमें माँ का कितना कसूर, बेटे का कितना कसूर, वो तो जब दोनों बैठे तो पता चले, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के कोई किस्से घरों में सुनाए तो आप आज के बयान का नाम याद रखें, तो ये मतलब आप सुना दें घर वालों को, देखो ये माँ बाप से दूर करते हैं या क्या करते हैं, जो बोलते हैं कि माँ के रोज कदम चुमो यानी जन्नत की चौखट को बोसा दो, ये तो यूं कहते हैं, बाप का रोज हाथ चुमो ये तो यूं कहते हैं, माँ बाप आए तो ताजीम के लिए खड़े हो जाओ तो यूं हमको सिखाते हैं, आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी घर में माँ बाप का अदब करना, तो जिसने किया ये उसकी गलती, कोई मुसलमान अगर शराब पीता है तो इस्लाम पर बरस पड़ने की जरूरत नहीं है, उस मुसलमान का कसूर है जो शराब पीता है ये खुद मुजरिम है। तो इसी तरह अगर कोई दावत इस्लामी में रहने के बावजूद माँ बाप को सताता है तंग करता है तो ये उसका इनफरादी जुर्म है, दावत इस्लामी का इसमें कोई कसूर नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला हमें माँ बाप का इताअत शियार और फरमाबरदार बनाए, और बदकिस्मत से पड़ोसियों का जहाँ तक ताल्लुक है इस मामले में हमारी गफलत का आलम यह है कि पड़ोसी के साथ एहसान का तसव्वुर ही नहीं है। सही बात यह है कि अब तो इसी हमारी सेपरेसी है कि पड़ोसी को तो हम मतलब पूछते भी नहीं, यानी कि जनरली अब माहौल इतना अजीब और गरीब हो गया तो पड़ोसी जो है इसके हुकूक बहुत ज्यादा जरूरी है। जो शख्स अल्लाह और कियामत के रोज पर ईमान लाया उसको अपने हमसाये अपने पड़ोसी की तादीम करनी चाहिए। एक हदीस शरीफ में फरमाया कि एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुलानी औरत नमाज रोजा सदका कसरत से करती है मगर ये बात भी है कि वो अपने पड़ोसियों को जबान से तकलीफ पहुंचाती है। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम में है। उस शख्स ने फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला औरत के नमाज रोजा और सदका यानी नफली में कमी, वो पनीर के टुकड़े सदका करती है और अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाती। आकाए दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो औरत जन्नत में है। तो देखा नमाजी रोजादार परहेजगार औरत पड़ोसियों पर टर करती है, टक टक करती है, कुड़कुड़ करती है, ईजा पहुंचाती है, गालियां बकती है, उन पर शोर करती है, तो इस जबान से ईजा पहुंचाने वाली को जहन्नम में दाखिल किया गया। तो अब कोई कहे ये तो औरत के लिए है, तो वहां तो औरत अगर जबान से ईजा करे तो वो जहन्नम में जाए और मर्द गरीबान पकड़ के घोसे जमाए तो वो जन्नत में चला जाइए। तो हदीस में तो एक औरत का पूछा गया तो ये हुक्म तो आम हो गया कि जो भी पड़ोसी को मतलब ईजा पहुंचाएगा उसकी गरीब है और पड़ोसी पर एहसान करेगा पर नवाजिश है। ठीक है, एक हदीस शरीफ में फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। तो अगर जोर जोर से घर में आप शोर करें और गली के बाहर अपनी कार पार्क कर दें, पड़ोसी को बेचारों को गुजरने में तकलीफ होती हो, या ऐसे सामान रख दें या दीवार खींच दें, हवा रोक दें, ना चबूतरा खींच लें जिससे पड़ोसी को बहरहाल किसी तरह भी तकलीफ हो, चाहे जबान से या आपके फेल से, तो आपकी शरारतों से पड़ोसी को अगर तकलीफ पहुंची तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। ये हदीस शरीफ में वईद है। सुभान अल्लाह, एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया जिस शख्स का इंतकाल हो जाए और उसके तीन पड़ोसी और वो सब के सब उससे राजी हो तो उस शख्स की मगफिरत हो जाएगी। एक बुजुर्ग के बारे में इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह मुताशिफुल कुलूब में बड़ी प्यारी हिकायत नकल करते हैं कि उनके घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी ने मशवरा दिया आप एक बिल्ली रख लें तो म्याओ म्याओ करती रहेगी, चूहे भाग जाएंगे। और बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि चूहे बिल्ली की आवाज सुनकर खौफ जदा होकर भागेंगे और पड़ोसियों के घरों में घुस जाएंगे, तो गोया मैं ऐसा आदमी बन जाऊंगा जो खुद तो एक तकलीफ को पसंद नहीं करता मगर दूसरों को वही दुख पहुंचाना चाहता। मेरे घर में चूहे भले, मेरे पड़ोसी के घर में यही चूहे नहीं जाने चाहिए। हम लोग तो जो भला अपने सर पे आती है तो पड़ोसियों पर टल जाए, तो चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, पड़ोसी के घर पे छोड़ दो, डाकू भी अपने घर पे ना आता हो, पड़ोसी के घर पे भले आ जाए। हमारी सोच और अल्लाह वालों की सोच, जब ही तो बुजुर्ग होते थे, नेक बंदे होते थे, अहलुल्लाह होते थे, इनकी मदनी सोच होती थी, हम तो आज तक ऐसा सोचे भी नहीं है ना। हम क्यों करते लाल बैग झाड़ देते हैं, चोटियां झाड़ देते हैं, जो भी जिंदा जिंदा फेंक देते हैं इस तरह के जरासीम, और बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करते कि पड़ोसी के घर में कभी घुसेंगे, बिल्कुल इसका ख्याल नहीं। कचरा पड़ोसी के आगे दरवाजे के आगे डाल देते हैं, कूड़ा कचरा, पड़ोसी को गलत तकलीफ, वो अपने को। तो पड़ोसी मतलब यानी के जो है वो मतलब यानी के बहुत ही वो हमारे लिए नाजुक तरीन मामला, वो भले हमसे बख्ती का बर्ताव करे भी फिर भी हमें तो नरमी करनी है। चुनाचे हदीस शरीफ में इरशाद आया कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अपने पड़ोसी की शिकायत की, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब्र कर, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा भी हाजिर होकर शिकायत की कि पड़ोसी से मुझे तकलीफ है। जब चौथी बार वो हाजिर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया कि अपना सामान रास्ते में डाल दे। सभी कहते हैं कि लोगों ने जब उसका सामान बाहर रास्ते पर पड़ा देखा तो पूछा क्या बात है, उसने कहा मुझे पड़ोसी सताता है, लोग वहां से गुजरते रहे, पूछते रहे और वो और कहते रहे कि अल्लाह ताला उस हमसाये को हिदायत करे। जब उस पड़ोसी को ये पता चला तो बेहद शर्मिंदा हुआ और माजरत करने लगा और दरख्वास्त की कि अपना सामान वापस ले आओ, खुदा की कसम में फिर कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। हिकमत अमल कुर्बान जाइए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी तालीमात पर कि अगरचे पड़ोसी लाख झगड़ा करे हमें ईद का जवाब पत्थर से देने की इजाजत नहीं। घर छोड़ दो मगर पड़ोसी से मत लड़ो। एक बात में आता है कि एक आदमी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला से आकर अर्ज किया, अर्ज है हजरत मेरा एक पड़ोसी है जो मुझे परेशान करता है, गालियां बकता है, तंग करता है। आपने सुनकर फरमाया जाओ अगर वो तुम्हारे मुतालिक अल्लाह की नाफरमानी करता है तो तुम उसके बारे में अल्लाह की इताअत करो। मतलब ये कि पड़ोसी अगर ईजा पहुंचा कर अल्लाह अज्जा वजल की नाफरमानी करता है मगर तुम तो सब्र और तहम्मुल का दामन मत छोड़ो, अगर तुमने भी जवाबन बदसुलूकी की तो ये अब तुम्हारी तरफ से भी अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी। और हदीस में भी ये है कि एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अपने पड़ोसी की शिकायत की, आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इज़ा पर सब्र करो और खुद उसको तकलीफ मत पहुंचाओ कि मौत एक दिन आपस में जुदाई कर ही देगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि पड़ोस का अच्छा होना तकलीफ न देने का नाम नहीं बल्कि पड़ोस की अच्छाई ये है कि पड़ोसी की ईजा पर सब्र करें। चाह रहे कि पड़ोसी की ईजा रसानी पर सब्र करेंगे तो अजर का खजाना भी तो हाथ आएगा। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला और कियामत के रोज पर ईमान लाया हो उसको अपने मेहमान की तआज़ीम करनी चाहिए। मशहूर यही है कि मेहमान अल्लाह की रहमत है, अवाम में ये मशहूर है और वाकई है भी ऐसा ही, अल्लाह की रहमत है लेकिन बस जो भी नेकी का काम है शैतान हमें गलत, और मेहमान की खिदमत क्योंकि नेकी का काम है तो इसलिए शैतान से भी हमको मतलब दूर रखता है और मेहमान को हम अपना बोझ समझते हैं कि ये कहाँ टपक पड़ा। ठीक है तो बहुत मतलब है ना कि मेहमान से हम लोग चिढ़ते हैं कि यार ये कहाँ आ गया, जान नहीं छोड़ता, जबान से कहते हैं आइए आइए और दिल में कहते हैं जाइए जाइए, खाना खाएंगे जबान से कहते हैं खाना खाएंगे और दिल से कहते हैं खबरदार पानी भी जो मांगा। यानी हमारी जबान और दिल में इस कदर तफावत है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भाई हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया ऐ बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आदमी जब अपने भाई की अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मेहमान नवाजी करता है और उसकी कोई जजा और शुक्रिया नहीं चाहता तो अल्लाह ताला उसके घर में 10 फरिश्तों को भेज देता है जो पूरे एक साल तक अल्लाह अज्जा वजल की तस्बीह और तहलील और तकबीर पढ़ते और उस मेजबान के लिए मगफरत की दुआ करते रहते हैं और जब साल पूरा हो जाता है तो उन फरिश्तों की पूरे साल की इबादत के बराबर उसके यानी मेजबान के नामे आमाल में इबादत लिख दी जाती है और अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे ये है कि उसको यानी मेजबान को जन्नत की लजीज गिजाएं जन्नतुल खुल्द और ना फना होने वाली बादशाही में खिलाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के घर मेहमान तो क्या आता है, गोया अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत की चमाचम बरसात शुरू हो जाती है, इस कदर अजरो सवाब अल्लाह अल्लाह। मगर याद रहे इसमें भी और हर अमल में इखलास शर्त है। अगर कोई दुनियावी मफाद या शोहरत के पेशे नजर किसी की मेहमान नवाजी करे तो फिर सवाब नहीं, यार इसकी अप्रोच बहुत है, चाहे की प्याली पिला दो काम निकलवा लो, या कोई बड़ा अफसर आ गया MNA MPA या काउंसलर या पुलिस वाला इसलिए उसकी खिदमत की ये मतलब ये अपने काम आएगा और अपने उल्टे सीधे इनसे काम निकलवाएंगे तो वो एक अलग मेटर। इन अमल बिन निजात अमाल का दारोमदार नियतों पर है, यानी कि जो मेहमान की मेहमान नवाजी इसलिए करे कि अल्लाह के लिए करे और उससे किसी किस्म का फायदा मकसूद ना हो। अगर उससे इतना मफाद है कुछ फायदा मकसूद है कि ये अपने को तोहफा देगा खुश हो जाएगा तो यूं कर देगा नौकरी दिलवा देगा तो अब ये फजीलत नहीं है, तो फजीलत उसकी सूरत में है कि लेवजिल्ला अल्लाह के लिए। तो अगर कोई दुनियावी मफाद या शोहरत के पेशे नजर किसी की मेहमान नवाजी करे तो फिर सवाब नहीं, और हरगिज हरगिज इस किस्म की बात जबान तो जबान दिल में भी न लाए कि हमारा मेहमान तो बड़ा बेबुरुवत निकला, कुछ देना तो दरकिनार जबानी शुक्रिया तक अदा नहीं किया, इस तरह सवाब भूल जाए। मेहमान के आगे जितना भी खाना रखा जाता है वो सारा हिसाब से मुस्तस्ना अलग, बल्कि मेहमान के आगे बहुत सारा खाना रख दिया जाए फिर इसमें से जितना भी बच रहे उसे खाते रहे तो क़यामत के रोज इसका भी हिसाब नहीं दिया जाएगा। इसलिए बाल बुजुर्गों की आदत होती थी कि घर में जो कुछ खाना हाजिर होता सबका सब मेहमानों और दूसरों के आगे रख देते और फिर बचा हुआ बाद में तनावुल फरमाते रहते। सुनाते इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक बुजुर्ग की आदत थी कि जब भाइयों के सामने दस्तरखान बिछाते तो बहुत सा खाना लगाते और फरमाते, हदीस पाक में आया है कि जो खाना दोस्तों के आगे से बच रहे उसका हिसाब नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो खाना दोस्तों के सामने से बचा हुआ उठाऊं वही खाया करूं। मेहमान से काम लेना मुरुव्वत के खिलाफ है। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु एक रात अपने मेहमान के साथ महज गुफ्तगू थे कि चिराग बुझ गया। आप खुद ही उठे, चिराग में तेल डाला। मेहमान ने किया, अमीरुल मोमिनीन मुझे हुक्म फरमा देते मैं तेल डाल देता। फरमाया मेहमान से काम लेना ठीक नहीं। और क्या खादिम को आवाज दे देते, फरमाया वो तो बेचारा अभी अभी सोया है। फिर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं तेल डालने से पहले जो उमर बिन अब्दुल अजीज था अब तेल डालने के बाद भी वही उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ। तुम्हारा प्यारे प्यारे साईं भाइयों हकीकत यही है कि मेहमान अल्लाह की नेमत है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत ये है कि इंसान मेहमान को दरवाजे तक रुख्सत करने जाए। अल्लाह करे कि हम भी मेहमानों की खुश दिली के साथ खिदमत। बाद बुजुर्गों के यहाँ तो ये है कि मतलब अपने मकान में एक कमरा अलग बतौरे डंगर खाना मेहमानों को खाना खिलाने के बतौर एक पूरे मकान में एक कमरा रखना उनके यहाँ अपने मकान की जकात। एक कमरा एक रूम मेहमानों के लिए मखसूस कर दिया। नहीं तो घरों में चलती भी कम है ना, बच्चे भी नहीं घरों में झगड़ा करना ना शुरू कर देते। अब एक मेहमानों के लिए कमरा मखसूस, तो ये हर एक खाने जिसकी चलती हो वो एक नियति कर ले कि भाई ये मेरा मेहमान खाना है। टीवी लॉन्च और पता नहीं बेडरूम ड्राइंग रूम ये सारे बनते हैं तो अभी एक मेहमान रूम भी बन। तो आप कहेंगे ड्राइंग रूम मेहमान रूम है, हो सकता है ऐसा ही। तो इन नमल आमाल जो अड्डा और कियामत पर ईमान लाए उसे अच्छी बातें करनी चाहिए वरना खामोश रहना चाहिए। इस उनवान पर तो तकरीबन 7 जुमेरात तक मैंने मुसलसल बयान किया है। अल्लाह करे वो 7 की स्थितियां आपको मुयसर आ जाए। ये भी मतलब कोई अमल है, क्योंकि बोलना भी कोई अमल है, क्योंकि यहाँ तो लोग मतलब के बोलते ही चले जाते, बिल्कुल बात को नॉन स्टॉप इतना बोर कर देते हैं कि बंदा उसको देखकर ही गली बदलता है कि यार आ रहा है, और उसको भी तरह तरह के अलकाब से नवाजता है। आने वाले को पीछे से सामने से गुनाहगार भी होता, ये गूंज है या ये मतलब खुशबू है ये गुनाह, पीछे से बुराई करता है। तो ये कई गुनाह बल्कि गुनाह यार ये ऐसा वबाल है, हकीकत ये है। इस गुनाह में दूसरों के हुकूक भी तो पामाल होते हैं, डायरेक्ट नहीं सही इनडायरेक्ट। इसमें इस पर मैंने मिसाल रखी ना कि अगर तुम ज्यादा बहुत बातों में होंगे तो लोग तुम्हें देख करके खुशबू आ रहा है तो गूंज आ रहा है अपने पर, अब ये टलेगा नहीं अपनी जान पर, ये काम है और लिया गया। तो इस तरह ना तुम बातों नहीं होते ना बेचारा ये तुम्हारी बुराई करके गुनाहगार हो। गुनाहों की वजह से तहस तालियां होती हैं, गुनाहों की वजह से बारिशें रुक जाती हैं, गुनाहों की वजह से वबाएं फैलती हैं, ताउन जैसी बीमारी गुनाहों की कसरत से फैलती है, लपेट में हर एक आता है। तो इन मानों पर गुनाह करने वाला जो है वो दूसरों के लिए भी गोया हक तलफी का इनडायरेक्ट सबब बनता है। हकुल अब्द तलब करने वाला इसको डायरेक्ट नहीं कह रहा है, हर गुनाह हकुल अब्द तलब नहीं करता, लेकिन यूं हर गुनाह का बबाल सब पर पड़ता और यानी के फिर सभी लपेट में आया। वो इन इस तरह भी गुनाहों से अगर इतनी से बचे के इसमें मेरे दूसरे मुसलमान भाइयों की भी खैर खाई है इसलिए भी मुझे गुनाह नहीं करना चाहिए तो इंशाअल्लाह इस खैर खाई का भी सवाब मिलेगा। दीन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। आप कहोगे खैर खाई के माना क्या, माना खैर माने भलाई, खाही माने चाहना, भलाई चाहना, तो दीन भलाई चाहने का नाम है। दीन ने दूसरे की भलाई चाहे, भलाई माने बेहतरी, अच्छाई, तो दूसरे की बेहतरी चाहे। तो इसलिए मतलब दूसरे की बेहतरी के बेचारा मेरी वजह से कहीं मुसीबत ना पड़े तो गुनाह से बचने में यूं बहुत सारे सवाब में एक सवाब इंशाल्लाह इस नीयत का भी हो जाएगा कि जितनी नीयतें हमारी अच्छी होती चली जाएंगी उतने सवाब भी हमारे बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए कि वाकई जबान हमें अता करके बहुत बड़ी नेमत अता की मगर एक तरह से इम्तिहान भी हमारे पीछे लग गया। ये जबान ना होती तो वो इम्तिहान भी शायद ना होता। ये वो शख्स बड़ा बदनसीब ठहरा कि जो अपनी जबान या आंखों के सबब जहन्नम में दाखिल हो जाए तो फिर सब गहरे सर पछाड़ पछाड़ कर कहेगा कि काश में गूंगा होता, काश में अंधा होता, मैं गूंगा और अंधा होता तो जबान और आंखों की वजह से जहन्नम का मुंह चूंढूं। ये बहुत मैंने गहरी बात, ये समझने वाली बात, ये अपनी एक सोच होती है। और हदीसों से मुतसादिब नहीं है। जाहिर है कि गाली दोगे किसी को जबान से तो हो सकता है कि अल्लाह नाराज हो और जहन्नम में फेंक, तो फिर बंदा तमन्ना करेगा काश मेरी जबान होती नहीं जो मेरे मुंह से गालियां लाओ। आंखें हैं तो बदनिगाही हो रही है, आंखें होती नहीं तो कैसे बदनिगाही, आंखें होती नहीं तो फिल्में कैसे देखते, ड्रामे कैसे देखते, नामहरम हूँ कैसे ताकते, अमरद हूँ कैसे बदनीयत से जी, होती नहीं तो कहते ना रहे बास ना बजे बास। तो ये आंखें ये जमाना तो जहन्नम की लगाम का काम दे रही है, बाहर ने जहन्नम की तरफ खींचने वाली लगाम, वो पील पड़ी हुई है आंखों की और वो जहन्नम की तरफ घसी गई, जिधर उठी बदनिगाही, जिधर उठी बदनिगाही, जिधर उठी बदनिगाही। एक बुजुर्ग का मसमू वाकया सुना हुआ वाकया, ये मतलब वो इतना नीची निगाहें रखने के आदि थे, इतना आदि थे नीची निगाहें रखने के, एक बार जैसे अपने दोस्त के घर तशरीफ ले गए तो उनकी कमीज में आकर देखा कौन है, वो नीचे निगाह है, वो खड़े हुए थे हमेशा इसी तरह रहते थे, नीचे निगाह होती थी। तो कमीज ने जाकर अपने आका से कहा कि वो आपके नाबीना दोस्त आए हुए, यानी मतलब लोगों को ये गुमान था कि ये नाबीना इनकी आंखें में इतना नीचे निगाह होता था। तो गोया उनके जहन में ये बात बैठ गई थी कि यहाँ से इस कदर नाजुक मामला है इम्तिहान का कि आंखें फौरन जहन्नम में उछाल कर फेंक देंगे। देखो ना हदीस शरीफ में है भी ना कि जिसने अपनी आंखों को नजर हराम से पुर किया उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। अब ये कि जैसे नाक देख रहे हैं, बेशक औरत खबरें दे रही है उसी को देख रहे हैं बेपरदा औरत, जहन्नम में जाने वाला काम है, अपनी आंखें हराम से भरी जा रही है और गो में फासिद में तसल्ली ये दे रहे अपने आप को, यार मैं तो खाली खबरें देखता हूँ, ड्रामे थोड़ी देखते गैर औरत को देखे तो खबरों में फिर औरतों के मजबूत सीन होते उल्टे सीन खैर होते ही होंगे। तो इस जमाने में तो आंखों की हिफाजत और जबान की हिफाजत ऐसा लगता है जुए शीर लाने के मुतराबित हो, समझ नहीं आता कि इस तरह आदमी कंट्रोल, इतना मुआशरा जो है इतना खराब हो गया, इतना बिगड़ गया कि कुछ समझ नहीं आता कैसे इन पर कंट्रोल किया जाए। दास समझाओ, दास समझाओ, बंदा मानने के लिए तैयार है, बात लोग समझाने से ये होता है कि मेरे सामने इसे खामोश है तो पीछे से जो मुड़ के देखा देख रहे कहते की आवाज आ रही है, इसी तरह निगाहों का मामला अपने सामने ही होगा और पीछे से करती होगा। तो मैं बेचारा गरीब मिस्किन क्या पता नहीं मेरा कैसा खात्मा होगा, मैं कहाँ जाऊंगा मरने के बाद, मुझे तो खुदा की कसम से नहीं, मैं तो बहुत ही मिस्किन और नादार हूँ अमाल के मामले में, वरना एक अमल भी मैं ऐसा नहीं जानता कि जिसके बारे में मुझे कंफर्मेशन हो कि भाई ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो कुछ पता ही नहीं। जब तो मुझसे डरना क्या, जिस तरह आप मतलब एक इंसान बशर है, तो इंसान बशर खता का मसला सरा सर मतलब खता कर ना, ये इनकी सारी है बंदा, ये हकीकत दर्ज कर रहा हूँ। महाराज ये कि अल्लाह ताला हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए, और ये मेरा मैंने तहरीक बहुत चलाई है कुफल मदीना की, जबान पर कुफल मदीना, निगाहों पर कुफल मदीना, ये आँख उठे तो बेशक कुरान की जियारत करे, मस्जिद की जियारत करे, दीनी किताबें पढ़े, तिलावत करे, कुरान को देखे पढ़े, इनकी ज्यारत करे, मजारात की ज्यारत करे, अल्लाह के नेक बंदों की ज्यारत करे, उलमा और मशाइख हजरात की ज्यारत करे, इससे तो मना ही नहीं है। आंखों का ये इस्तेमाल तो माँ की ज्यारत करे, बाप की ज्यारत करे, जैसे मैंने अर्ज किया अभी कि माँ को रहमत की नजर से एक बार देखो एक मकबूल हज का सवाब लूटो, तो इसका तो मना ही नहीं है कि आंख को बिल्कुल छोड़ दे, ये तो कोई नहीं कहता। वो तो उनको किसी किसी का दर्जा होता है, मकाम होता है, जिन्होंने आंखों के मकसद को समझा। जैसा कि एक सहाबी ने सुना के अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, वफात ज़ाहिरी पर्दा फरमा, तो बेकरार हो गए, मुक्तजाब उस दावत को से दुआएं कबूल होती जिंदगी, फौरन हाथ उठा दिया गया, अल्लाह ये इन आंखों से तो मैं तेरे महबूब के जलवे देखता था, खूब रच के दीदार करता था, या अल्लाह अब महबूब तो निगाहों से छुप गए, अब तो मैं इन्हें देख नहीं सकूंगा, तो भी इन आंखों की मुझे जरूरत भी नहीं रही, या अल्लाह ये आंखें वापस ले ले। तो दुआ खत्म होने से पहले पहले वो नबी ना हो। किसी ने कहा ना, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जबान, अल्लाह रसूल की तारीफ के लिए जबान बनाई, उन्हीं की याद के लिए दिल बनाया गया, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते,
शाह तार पर है आन रहमत की नजर रखना करे दिन रात।